प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाइन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुतालिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाबे मसीह और मसीहियत के मुतालिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए, और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामईन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद इशफाक ने लाहौर से, और वो ये पूछते हैं कि बाइबल सोसाइटी एक मायने में बाइबल का मुहर्रफ होना तस्लीम करती है, चुनांचे सोसाइटी वक्तन फक्तन नए नए तर्जमे शाया करती रहती है जिनमें इसलाह होती रहती है।
बाइबल सोसाइटी एक माना में बाइबल का मुहर्रफ होना तस्लीम करती है, चुनांचे सोसाइटी वक्तन फवक्तन नए नए तर्जमे शाया करती रहती है जिनमें इसलाह होती रहती है। ये एतराज कि कोई इदारा मुख्तलिफ तराजिम शाया करता है, एक ही किताब के वक्तन फवक्तन या मुख्तलिफ इदारे उसी किताब के मुख्तलिफ तराजिम शाया करते हैं और यह तहरीफ की दलील है, इंतहाई बोदा एतराज है। बच्चे भी इस उनका एतराज नहीं किया करते। हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जिन्हें लोग मुकद्दस समझते हैं, जिन्हें मुनज्जल मिनल्लाह समझते हैं, इसके बावजूद उनके दर्जनों तराजम मौजूद हैं और कभी कोई ये नहीं कहता कि ये तहरीफ हो रही है। तर्जमा असल में असल मफहूम को लोगों तक पहुंचाना मकसूद होता है। जबानें बदलती रहती हैं। अगर जबान बदलती है तो जाहिर है कि आपको तर्जमा बदलना पड़ता है कि आज वो कौन वो जबान समझेगा जो सदियों पहले की थी। आप शुरू की उर्दू देख लीजिए और आज की देख लीजिए तो आपको जबान में बहुत इख्तिलाफ दिखाई देता है। गालिब का एक शेर है कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। आप बताइए इस शेर को एक आम आदमी समझ पाता है? अब ये कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, अगर ना पूछ की जगह मपुर्स लगा देते पूरी फारसी थी, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। या ये देख लीजिए मीर तकी मीर का शेर के सिराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। आज कौन टुक इस्तेमाल करता है? जाहिर है कि आज अगर आपको तशरीह करना है तो आप टुक के माने अभी इस्तेमाल करेंगे, टुक वुक नहीं कहेंगे। जबान में इस तरह से बातें होती रहती हैं। तो लिहाजा बाइबल सोसाइटी हो या और इदारे हो जो मजहबी किताबों के तराजिम करते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर जबान बदल गई है वो जबान इस्तेमाल की जाए जो आज इस्तेमाल हो रही है ताकि लोगों की समझ में आए। दूसरी बात यह होती है कि मुख्तलिफ जमानों में तर्जमा करने के उसूल बदलते रहते हैं। एक जमाने में ये उसूल था कि आप लफ्ज बलफ्ज तर्जमा कीजिए। मसलन फर्ज कीजिए कि तौरात की पहली आयत है बेरेशीत बारा इलोहिम एथा शमाजीम व एथा अरस, तो अब इसका लफ्जी तर्जमा ये होगा मैं इब्तिदा खल्क किया अल्लाह ने को आसमानों और को जमीनों। ठीक है, तर्जमा तो बिल्कुल सही है, और जमीन तर्जमा बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आज ये उर्दू हम ऐसे ही लिखते हैं? शायद एक साहब तर्जमा करेंगे कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, अब ये जमीन और आसमान की तरतीब बदल गई है, ये तहरीफ नहीं है, लेकिन उर्दू में जमीन और आसमान कहते हैं, आसमान और जमीन नहीं कहते। एक साहब हैं वो और कहते हैं कि भाई खुदा ने तखलीक कायनात का आगाज इस तरह किया, तो ये भी वही मफहूम है। अब शुरू की जगह आगाज लगा दिया, जमीन और आसमान की जगह कायनात लगा दिया, लेकिन मफहूम तो वही है। अगर मफहूम बदल जाए, यानी इबारत तो ये हो कि खुदा ने शुरू में या इब्तिदा में जमीन और आसमान को खल्क किया, और कोई साहब इसका तर्जमा ये करें कि साहब इस कायनात को बनाने के 500 बरस बाद शैतान ने जमीन और आसमान बनाए, तो आप कहेंगे भाई ये क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, ये 500 बरस बाद का जिक्र नहीं था, शैतान का जिक्र नहीं था, ये क्या तो ये तहरीफ होगी। लेकिन तर्जमे में इख्तिलाफ होना और बाज़फा इसका इम्कान इसलिए भी होता है कि एक लफ्ज़ के एक से ज्यादा मानी होते हैं। हर मुतर्जिम ये सोचता है कि मैं यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ लगाऊं जो सही मफहूम अदा कर रहा है उसकी अपनी सोच और समझ के मुताबिक। दूसरे साहब का तर्जमा उससे मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन एक साहब हैं, उन्होंने तर्जमा किया, आमतौर पर तर्जमा जो है वो ये है कि चादर ओढ़ने वाले, किसी ने किया कमली ओढ़ने वाले, किसी ने कहा कम्बल ओढ़ने वाले। एक साहब ने तर्जमा अभी छपा है, उसमें उन्होंने कहा कि वर्दी पहनकर तैयार रहने वाले। अब जाहिर है कि उनके नजदीक ये मफहूम बनता होगा, उन्होंने बना लिया। बाज़ औक़ात मुहावरात आते हैं, अगर आप मुहावरात का तर्जमा लफ्ज़ी कर देते हैं तो बड़ी ऊट पटांग चीज बन जाती है। मसलन अंग्रेजी में एक मुहावरा है टू हिट द नेल, अब क्या करेंगे। या एक और मुहावरा ले लीजिए, बहुत आसान है, अमरीकी जबान में है टू हिट द सैक। अब हिट द सैक का लफ्ज़ी मतलब यह है कि बोरी को मारना। अब आप परेशान होंगे कि एक साहब कहते हैं कि रात को भाई मैंने बहुत जल्दी बोरी को मारा, भाई पागल हो गया था, बोरी को मारने लग गया था। लेकिन अमरीकी अंग्रेजी में इसका मतलब यह है कि मैं रात बहुत जल्द सो गया था। तो हिट द सैक के मानी है सो जाना, बोरी को मारना नहीं है। हम कहते हैं टू ड्राइव अ नेल, अब लफ्जी तर्जमा यह होगा कि भाई नाखून दौड़ाना। एक साहब कह रहे नहीं, नेल नाखून नहीं है, ये कील है, तो कील दौड़ाना। लेकिन उर्दू में कील दौड़ाई नहीं जाती, कील गाड़ी जाती है, तो कील गाड़ना उर्दू में तर्जमा होगा, नाखून नहीं होगा, इसलिए कि नेल के दोनों माना हो सकते थे। या आप टेबल ले लीजिए, टेबल एक वो है जिसे मेज कहते हैं, एक टेबल वो है लिखा होता है कि साहब प्लीज सी टेबल नंबर 4 एट पेज 13। तो अब इसका तर्जमा भाई ये नहीं होगा कि सफा 14 पे आप तीसरी जल्द मेज देखिए, बल्कि तीसरी जदवल देखिए। आपका टेबल वाटर होता है तो ये पानी की सतह होती है, पानी की मेज नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन टेबल जो होते हैं वो पहाड़े उर्दू में कहलाए जाते हैं, उनको कभी कोई जर्ब की मेजें नहीं कहता है। तो तर्जमा जब आप करते हैं, आपके सामने मुख्तलिफ इम्कानात होते हैं, आप उनमें से किसी एक का इतलाक करते हैं कि इसको कहाँ लगाया जाए। तो अगर फर्ज कीजिए कि कभी किसी ने कोई और इंतखाब किया, बाद में कोई और साहब और इंतखाब कर लेते हैं, तो ये तहरीफ नहीं है, ये तहरीफ का एतराफ नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ तफहीम है और तफहीम हमेशा बदलती रहती है। और आपको जो इख्तलाफ दिखाई देता है वो ये है कि आप लफ्ज़ को पढ़ते कैसे हैं। हुई वाली बात कि जब जेर जबर नहीं थे तो आप उस लफ्ज़ को क्या पढ़ रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, एक साहब उसको पढ़ते हैं रियाहन बोशरा, फैल बशारत देने वाली हवाएं, दूसरे साहब पढ़ते हैं रियाहन नोशरा, फैलने वाली हवाएं, दोनों मुमकिन हैं। तो जिसने जिस तरह से पढ़ा उसने उस तरह से तर्जमा कर दिया। मसलन चूंकि आपने बात की है कलामुल्ला की, तो हम उसमें से आपको एक मिसाल देते हैं। एक तर्जमे में ये लिखा हुआ है कि क्या बैलों से हल चलाया जा सकता है, दूसरे तर्जमे में यह है कि क्या बैलों से समंदर में हल चलाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ये तो तहरीफ है भाई, इसमें समंदर कहां से आ गया। जिस लफ्ज का तर्जमा बैलों से या बैलों से समंदर में किया गया है वो एक ही इब्रानी जबान का लफ्ज बेबाकारीम है। अब इसको आप पढ़ते कैसे हैं, अगर आप इसे एक लफ्ज पढ़ते हैं बेबाकारीम, तो बे का मतलब साथ, बाकर बैल, ईम जमा है ये बैलों के साथ, सही तर्जमा है। दूसरे साहब ने तर्जमा किया है कि बैलों के साथ समंदर में, वो पढ़ रहे हैं बे बाकार याम, बे का मतलब साथ, बाकार का मतलब बैल, याम का मतलब समंदर, बैलों के साथ समंदर में। और दूसरा मफहूम ज्यादा बेहतर दिखाई देता है क्योंकि बैलों के साथ क्या कोई बैलों के साथ हल चला सकता है, भाई बैलों के साथ ही चलता है और कौन जुटता है। लेकिन दूसरे में बैलों के साथ क्या समंदर में हल चलाया जा सकता है, नहीं ये मुमकिन नहीं है। तो ये दूसरी वाला दूसरा तर्जुमा बेहतर मालूम होता है। तो ये तराजिम के इख्तलाफात तहरीफ का एतराफ नहीं, ये इस बात का एतराफ है कि हम एक बात को एक से ज्यादा अंदाज में समझ सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपको बाइबल सोसाइटी के मुख्तलिफ तराजम दिखाई देते हैं या उनमें इख्तलाफात दिखाई देते हैं, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि असल मतन बदला गया है, बल्कि आपकी समझ, सोच اور تفہیم میں اختلاف ہے. دو لوگ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے بیان کر رہے ہیں تو یہ تحریف کا قطن کوئی ثبوت نہیں ہے. اس قسم کے مختلف بیانات ترجمے آپ کو ہر کتاب کے ملیں گے اور یہ بالکل ممکن ہوتا ہے اور یہ عین تقریباً ناممکن ہے کہ دو آدمی ایک ہی عبارت کا لفظ بلفظ ایک جیسا ترجمہ کریں. آپ خود دیکھ لیجئے. آپ ایک ہی عبارت دے دیجئے پانچ چھ افراد کو انگریزی کی اور اسے کہیے ترجمہ کیجئے. مفہوم تقریباً ایک جیسا ہوگا لیکن الفاظ مختلف ہوں گے. تو یہ تحریف کا ثبوت نہیں ہوا کرتا. خدا کے لیے اس کو غور کیجئے کہ مختلف تراجم مختلف تفاہیم کا تو نتیجہ ہیں لیکن مختلف ترمیمات کا نتیجہ نہیں ہے. یہ کسی قسم کی تحریف کا نتیجہ نہیں ہے. یہ متن میں تبدیلی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی متن کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کا مختلف انداز ہے. جیسے ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ایک آدمی اس کو ملک پڑھتا ہے تو بادشاہ ترجمہ کرتا ہے, ملک پڑھتا ہے تو فرشتہ ترجمہ کرتا ہے, ملک پڑھتا ہے تو اس کا ترجمہ ملک کرتا ہے, ملک پڑھتا ہے تو وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ جائیداد کرتا ہے. تو یہ سمجھنے کے انداز ہیں. اگر یہ باتیں سامنے رہیں تو مختلف تراجم کی توجیحات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں.
سامعین, ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر آپ ہم سے بذریعہ ایس ایم ایس رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0310204306. نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرائے دیتی ہوں, 0310204306. اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں ایس ایم ایس کر دیں. ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaihaq.com. ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں, ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaihaq.com. اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.